धवला पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 13 ओ नमः सिद्धे ओ नमः सिद्धे ओ नमः सिद्धे ओ शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं लोया लोयपयासं बोधमथेरं पुनोजिनं वीरम् नम्यूणखेत्रसुत्तं जहो वये संपयासेमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें जो प्रथम खंड है जीवस्थान नामक, उसमें अपना विषय है क्षेत्रानुगम। और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 62। देखो, हम नारकियों में उच्छेद देख रहे थे। कहां से शुरू किया था? पहले नरक के पहले पाथड़े से। वहां तीन हाथ था और अंतिम पाथड़े में सात धनुष और तीन हाथ और 12 अंगुल थे कुछ ना। तो वो कैसे निकालना? 12 बार वृद्धि हुई तो टोटल वृद्धि 12 भागों में मिलके होगी, तो 12 गच्छ है, तो 12 से डिवाइड किया तो प्रति पटल इतनी इतनी वृद्धि हुई, हमने देखा था। द्वितीय आदि नरकों के लिए मुख जिसको कहेंगे, यानी मिनिमम जो संख्या है, वो पूर्व पाथड़े के, यानी पूर्व नरक की बात होती है। और अंतिम पाथड़े में पूर्व जो नरक है उसके जो अंतिम पाथड़े का था उससे 2 गुना हो जाता है। तो पहले में जो हमने देखा उससे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना सातवें नरक तक। सातवें नरक में हमने देखा था 500 धनुष हाइट टोटल। और ये कैसे कैलकुलेशन करना उसकी बात हमने विस्तार से देखी थी। नारकियों के हाइट की बात है। अभी नारकियों के विष्कम्भ, उसका जो एरिया कैसे निकालने अवगाहना, वो अभी नहीं हुई, केवल हाइट देखी हमने। अभी यहाँ 62 पेज पर नीचे का पैराग्राफ है। यहाँ नारकियों में मिला, नीचे से तीसरी लाइन, यहाँ नारकियों में उच्छेद के 8वें भाग प्रमाण विष्कम्भ होता है ऐसा समझकर। हमने पहले देखा था देवों में जो उच्छेद है, हाइट है, उसके 10वें भाग प्रमाण विष्कम्भ होता है देवों में। मनुष्यों में 9वें भाग प्रमाण होता है और नारकियों में 8वें भाग प्रमाण। हमने 40 पृष्ठ पर देखा था पहले। 40 निकालो। वहाँ दूसरा समाधान है ना, देव मनुष्य और नारकियों का उच्छेद 10, 9 और 8 ताल के प्रमाण से कहा है। ताल ने उनका जो विष्कम्भ ले सकते, यानी उनकी जो चौड़ाई है उससे उनका उच्छेद 10 गुना देवों का, मनुष्यों का 9 गुना और नारकियों का 8 गुना। उल्टा कहना है तो विष्कम्भ से उनका, सॉरी, हाइट से उनकी विड्थ देवों की 10वें भाग प्रमाण, मनुष्यों की 9वें भाग प्रमाण और नारकियों की 8वें भाग प्रमाण। तो यहाँ नारकियों का जो है उच्छेद के 8वें भाग प्रमाण विष्कम्भ होता है ऐसा समझकर। विष्कम्भ के बाद हम परिधि निकालते हैं और परिधि को विष्कम्भ के 4थे भाग से गुणा करते हैं तो हमें गोल की एरिया मिलेगी, क्षेत्रफल, और उसको उच्छेद से गुणा करते हैं। विष्कम्भ की परिधि को आधा करके और विष्कम्भ के आधे से गुणित करके मिला पेज 62 पर। देखो, विष्कम्भ की परिधि की डायमीटर मालूम है तो परिधि की है, यानी सरकमफेरेंस निकाला।
यहाँ पर आपने जो पेज नंबर 40 पे बताया,
हाँ, पेज नंबर 40 पर
काल के यानी वीत के भ्रमण से कहा गया।
वीत पर तो उसका अर्थ ऐसा लेना उसकी उसकी एक्चुअली वहाँ ताल का एक्चुअल अर्थ होता है वीत, परंतु यहाँ लेना है उसकी शरीर की चौड़ाई विषकम।
तो अंगुल में गिन रहे ना यहाँ
पर, कोई भी हो जितना उसका हाइट है उसके दसवें भाग प्रमाण देवों की विड्थ होती है। प्रमाण यानी वो ताल का अर्थ ऐसा लेगा उसका डायमीटर विषकम्भ ऐसा अर्थ लेते हैं तो वो ज्यादा सूट हो जाता है। ताल का अर्थ वहाँ विषकम्भ ले लो, यानी देवों का विषकम्भ कितना है उनके दसवें भाग प्रमाण है, यानी यहाँ उसका अर्थ होता है विषकम्भ। क्योंकि हम चौड़ाई ऐसे देखेंगे तो ये तो इससे ज्यादा हो जाएगी ना, ऐसे दो वीत तो हो जाती है तो वीत उसका प्रमाण नहीं ले सकते हम, उसको कहेंगे विषकम्भ कितना है। ताल शब्द का एक्चुअल अर्थ होता है पाम ऑफ अ हैंड, परंतु यहाँ उसका अर्थ लेना है वो देह की चौड़ाई कितनी है। अभी आना 62 पेज पर, यहाँ क्या किया विषकम्भ की परिधि को, यानी ये जो हमने विषकम्भ निकाला उसकी परिधि निकाला करीबन तीन गुना होती, उसके हमने अलग अलग पद्धति, एक स्थूल होता है तीन गुना, थोड़ा मध्यम है, फिर और अति सूक्ष्म, ऐसे तीन पद्धति से बताया था। तो जो कोई परिधि निकलेगी, इन्होंने यहाँ क्या बताया परिधि का आधा उसको गुणा करना विषकम्भ के आधे से, और कहीं कहीं ऐसा होता है परिधि को विषकम्भ के चौथे भाग से गुणा करा, दोनों का अर्थ एक ही है। ख्याल में ये बात, देखो ये हमारे ये गोलाकार कोई चीज है और उसके ये विषकम्भ हाइट है। पहले में पहले क्या कि इस गोलाकार का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसकी जो चौड़ाई है विड्थ गोल की, जैसे ये इसका हमको एरिया निकालनी क्षेत्रफल, तो ये कह जाता है विषकम्भ यानी डायमीटर। ये जो है पूरा ऐसा राउंड वो है परिधि सरकमफेरेंस, तो इससे तिगुना करीबन ये हो जाता है, और उसको क्या करना है डायमीटर के चौथे भाग से गुणा करो, या दूसरी भाषा में परिधि का भी आधा करो और उससे विषकम्भ के आधे से गुणा करो। बात एक ही है, देखो परिधि के लिए हम प लिखते हैं, परिधि का आधा मल्टीप्लाइड बाय विषकम्भ का आधा, विषकम्भ यानी डायमीटर, ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ये दो गुना दो, ये विषकम्भ के चौथे भाग से परिधि को गुणा करो, ऐसा भी कहीं कहीं कथन आता है, कहीं कहीं ऐसा कथन आता है, कथन तो एक ही है, बताने के दो तरीके हो गए। तो क्या मिला हमको, गोलाकार एरिया का पूरा क्षेत्रफल निकला, जैसे हम घर की एरिया देखते वैसे यहाँ गोलाकार का क्षेत्रफल निकला। अभी जितनी हाइट होती है उससे उसको गुणा करना, नहीं उच्छेद कहते हाइट यानी उच्छेद और विड्थ यानी विषकम्भ। तो कहते हैं उच्छेद से गुणित करने पर, यह देखो ना विषकम्भ की परिधि को आधा करके यानी परिधि डिवाइडेड बाय टू और विषकम्भ के आधे से गुणित करना मल्टीप्लाइड बाय विषकम्भ डिवाइडेड बाय टू, उसे उच्छेद से गुणित करना, उच्छेद यानी हाइट, हाइट से भी गुणा करना, तो क्या हुआ नारकी की अवगाहना मिलेगी। जो जिस नारकी की हम निकाल रहे हो 500 धनुष की निकालो या कुछ तीन हाथ की निकालो, अपनी अपनी एरिया निकलेगी। अवगाहना की अपेक्षा सातवीं पृथ्वी प्रधान है, क्योंकि हमको मेजर इन्हें मुख्य अवगाहना लेना है, तो 500 धनुष है उसके हिसाब से यहाँ उसकी परिधि निकालेंगे, ये बाकी सब ऐसा ही निकालेंगे। क्योंकि पहली पृथ्वी की अवगाहना से सातवीं पृथ्वी की अवगाहना संख्यात गुणी पाई जाती है। यहाँ तो तीन हाथ है और वहाँ तो 500 धनुष है, कितने गुणा हो गया? 500 × 4 हाथ करना पड़ेगा, 2000 हाथ और ये तीन हाथ, तीन से वो 2000 कितने गुना हुआ? 2000 डिवाइडेड बाय तीन, हाँ 318 वो छः कर दो, हाँ तो इतना गुना हो जाता है, उसको संख्यात गुना कहा। तथा द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा, इसका अर्थ है संख्या की अपेक्षा, द्रव्य प्रमाण यानी संख्या, मेजोरिटी नार की कहाँ है तो पहले में रखना, संख्या की अपेक्षा। क्योंकि आप नए हैं ना, अभी द्रव्य प्रमाण अनुभव हमारा पूरा पुस्तक हुआ तो उसको संख्या कहते हैं। पहली पृथ्वी प्रधान है यानी वहां नारकियों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि द्वितीय आदि शेष छह पृथ्वियों के द्रव्य प्रमाण से पहली पृथ्वी का द्रव्य असंख्यात गुना पाया जाता है। यहाँ क्या कहते हैं? दूसरी पृथ्वी यानी दूसरा नरक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, सबकी टोटल करो तो भी उनसे असंख्यात गुना नारकी पहले नरक में होते हैं, ये कहना चाहिए। अकेले एक एक को पकड़ो तो उससे असंख्यात गुना हो ही जाएंगे, सबकी टोटल करो तो उससे भी असंख्यात गुणे नारकी पहले नरक में। सब चक्कर काट के आए हैं, हाँ कोई बाकी नहीं छोड़ा है, क्योंकि हम अनादि से है ना, अभी मनुष्य बने हैं तो इन पर्यायों में घूम घूम के आए हैं कि नहीं आए। इस प्रकार सातवीं पृथ्वी के अवगाहना के गुणकार से पहली पृथ्वी के द्रव्य प्रमाण का गुणकार बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पर पहली पृथ्वी को प्रधान करना चाहिए। देखो क्या कहना चाहते हैं,
ये
देखो यहाँ ये कहना चाहते हैं, किसको मुख्य करना, पहली पृथ्वी की के सातवीं पृथ्वी को, तो उसके क्या कहना चाहते हैं? एक बाजू हम अवगाहना की अपेक्षा बात करेंगे तो सातवीं पृथ्वी कितने गुना है उसके अवगाहना, 318 वगैरह होगा, संख्यात गुना है। और अभी हम उल्टे संख्या की अपेक्षा देखेंगे तो अकेले सातवीं पृथ्वी की अपेक्षा पहली पृथ्वी में असंख्यात गुना है, ये तो संख्यात गुना का डिफरेंस, वो असंख्यात गुना है यानी इसलिए पहली पृथ्वी को मुख्य करके कथन करेंगे। अवगाहना की अपेक्षा वो मुख्य है परंतु संख्या की अपेक्षा ये बहुत ज्यादा है, असंख्यात गुना है। वो तो हाँ ये तो 666 गुना हुआ और वो तो असंख्यात गुना हुआ, नहीं संख्या की अपेक्षा, टोटल संख्या देखेंगे तो फिर से देखो सेकंड लाइन, द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा पहली पृथ्वी प्रधान है, अवगाहना की अपेक्षा सातवीं पृथ्वी प्रधान है, ये दोनों बात समझ में आई? हाँ
ऊपर से चौथी लाइन फिर से
समझाएं। देखो यहाँ क्या, इस प्रकार पहले में दोनों बातें अलग अलग बता दी कि अवगाहना में सातवीं पृथ्वी प्रधान है ना, उसकी अवगाहना ज्यादा है, और द्रव्य संख्या की अपेक्षा पहली पृथ्वी प्रधान है ना, उसकी मुख्यता है। अब इस प्रकार सातवीं पृथ्वी के अवगाहना के गुणकार, ये गुणकार कितना है? 666.66 संख्यात,
यानी एक जीव की अपेक्षा से उसकी हाइट है ना।
हाँ
तो
यहाँ लेना अवगाहना की अपेक्षा गुणकार कितना है?
666
गुणा यानी संख्यात गुणा, यानी अवगाहना की अपेक्षा बात करेंगे तो सातवीं पृथ्वी संख्यात गुणा है पहली पृथ्वी के अवगाहना से, और संख्या की अपेक्षा देखे तो सातवीं पृथ्वी से यह असंख्यात गुना है, अवगाहना की अपेक्षा वो संख्यात गुना है और संख्या की अपेक्षा ये वाले असंख्यात गुना, तो असंख्य तो बहुत बड़ा प्रमाण हुआ। इसलिए यहाँ पर मेजॉरिटी क्षेत्र में मेजॉरिटी किसकी होगी, तो पहले पृथ्वी की। तो सातवीं पृथ्वी के अवगाहना का गुणकार, ये अवगाह का गुणाकार हमने निकाला ना, यानी जो वहां 500 धनुष डिवाइडेड बाय 3 हाथ ऐसा उसको लिया। यानी 2000 हाथ डिवाइडेड बाय 3 हाथ हुआ ना, ये गुणकार हुआ। उससे पहली पृथ्वी के द्रव्य प्रमाण का गुणकार ये असंख्यात है। समझ में आती है बात, बहुत बड़ा। इसलिए यहाँ पर पहली पृथ्वी को प्रदान करना चाहिए, यानी उनकी अपेक्षा से बात करेंगे, यानी पहली पृथ्वी की जो एवरेज वहाँ निकालेंगे, वहाँ पर भी सबसे अधिक अधिक संख्या ऊपर ऊपर के पालडे में होंगे। अब सामान्य रूप से यहाँ पर अर्थपद का निरूपण करते, यानी कुछ नियम बताएंगे, कुछ स्टेटमेंट्स करेंगे। अर्थपद का अर्थ होता है नियम। ये जो 6-10 पद है उसको क्षेत्र की अपेक्षा वो पदों की बात है। ये अर्थपद, ये शब्द हर विषय में आता है कि अभी अर्थपद कहेंगे, यानी वो कुछ बेसिक नियम कहेंगे या बेसिक स्टेटमेंट्स देंगे आपको, वो है अर्थपद। अभी यहाँ जो नारकियों में जो अलग अलग पद देखे ना हमने, स्वस्थान है, विहारवत है, वो सब वेदना कषाय मारणांतिक वगैरह, उसमें कौन सी राशि मुख्य, दूसरी राशि उसके कितने भाग प्रमाण, ऐसी बातें करेंगे। तो कहते स्वस्थान, स्वस्थान राशि मूल नारक राशि के संख्यात बहुभाग प्रमाण है, क्योंकि बाकी अपेक्षा से इसको संख्यात बहुभाग का। सातों नरक, यानी सामान्य से बात है। अभी यहाँ कौन से नरक की कुछ ऐसा नहीं लिखा, नारकी इन जनरल। तो उसमें स्वस्थान, स्वस्थान मेजॉरिटी यानी संख्यात बहुभाग, उसके बाद विहार व स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैक्रिय समुद्घात को प्राप्त राशियां मूल राशि के संख्यात वे भाग प्रमाण है। हाँ, संख्यातवा भाग, संख्या से भाग देकर उसका एक भाग, ऊपर का बहुभाग। जैसे हमने किसी संख्या से, हमारे पास 1600 है, तो उसको हमने 16 से भाग दिया, तो एक भाग कितना है 100, और बहुभाग 1500, ऐसा यहाँ लेना। स्वस्थान, स्वस्थान बहुभाग प्रमाण, और बाकी अपनी अपनी एक एक भाग प्रमाण। अभी वो किसी का कौन सा संख्यात्वा भाग है वो एग्जैक्ट उसके आपस में कंपैरिजन नहीं की, फिर भी वो संख्यात्वा भाग, हजारवा भाग होगा, कुछ भी भाग होगा, उसको संख्यात्वा कहेंगे। सबका अपना अपना है एक भाग, बहुभाग नहीं, एक भाग मिलके नहीं, अपना अपना सिंगल सिंगल अलग अलग संख्यात्वा भाग। हाँ, यानी जैसे हम एक भाग 100 बचा, अब उसके और भाग कर दो, तो उसमें से कौन सी राशि कितने भाग है वो बताएंगे। पहला बहुभाग तो निकाला, और इसके रिमेनिंग के फिर बहुभाग, बहुभाग, एक भाग बहुभाग करेंगे। यह अर्थपद सर्वत्र जोड़ लेना चाहिए। आशाबेन, आपके पीछे के कपाट में एक पुस्तक है, मुझे देना, लेफ्ट साइड में है, जीवकांड, जीवकांड दूसरा भाग, स्लोली ऐसा यू लिखा है ना पीछे, उसमें से छोटी पुस्तक दूसरा,
लेफ्ट सेकंड नंबर,
उल्टा हुआ। हाँ, थैंक यू। हाँ बोलो, जीव कांड पुस्तक में से मैं कुछ बताना चाहती हूँ। अर्थपद ने कुछ नियम बता रहे, अर्थपद ये कॉमन शब्द जो है वो बहुत जगह आता है, उसका अर्थ है वो कुछ नियम, कुछ स्टेटमेंट्स बता रहे हैं। देखो यहाँ उन्होंने किसी भी लेशा में किसी भी इसमें उन्होंने क्षेत्र अधिकार उन्हें बताया, हर एक में यही बात उन्होंने बताई है। यह मैं कृष्ण लेशा में पढ़ती हूँ, यही बात ऐसा ही बहुभाग एक भाग अन्य में भी होता है। तो यहाँ तो कहते वह उन्होंने कृष्ण लेशा में बता रहे, कृष्ण लेशा में वैकिरिक शक्ति वाले यानी नारकी की बात है। तो वैकिरिक शक्ति सिद्ध जीवन का परम वैकिरिक कायोगी जीवन के किंचित कम त्रिभाग है। अभी क्योंकि वो कृष्ण लेशा वाले थे इसलिए त्रिभाग लिया, क्योंकि अन्यत्र भी उसके कृष्ण नील कपूत वाले होते उसकी अपेक्षा से बात की। देखो बहुभाग स्वस्थान स्वस्थान में जीव है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। अभी हमने यही पढ़ा था ना, टोटल जो है उसे बहुभाग स्वस्थान स्वस्थान संख्यात बहुभाग स्वस्थान स्वस्थान, जो एक भाग रहेगा उसको फिर संख्यात का भाग दो, वहां बहुभाग विहार व स्वस्थान। फिर जो एक भाग जैसे हमने 100 निकाले थे, अभी 100 को फिर हम किसी भी संख्या 10 से भाग दो ना,
फिर वो 15 से 10 भाग पाता है,
वही होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं, वो संख्या दूसरा भी हो सकता है। ये हमने वहां 16 से भाग दिया, यहाँ 16 करेंगे तो 16 आपको समझाने के लिए कोई भी अटपटी संख्या ले रहे हम। बहुभाग विहार व स्वस्थान जो अवशेष एक भाग रहे उसको संख्यात का भाग देने पर बहुभाग वेदना समुदाय, हमने पहले आपको यही बताया था एक क्रम से इसका नंबरिंग करना, स्वस्थान स्वस्थान फिर विहार व फिर वेदना फिर कषाय फिर वैकिरेक, इसलिए यही यहाँ लिख रहे हैं। अवशेष एक भाग को संख्यात का भाग देने पर बहुभाग कषाय समुद्घात में, और वहां केवल वैकिरिक की वाली बात करनी थी इसलिए वहां एक भाग वैकिरिक में ले लिया। अब यहाँ पर भी देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। अभी वहां तो हर एक लेशा में अलग अलग बात है, अलग वो क्योंकि वो लेशा का प्रकरण था, हमारा गति मार्गणा का प्रकरण, जब हम लेशा मार्गणा में जाएंगे इसी पुस्तक में तब उसकी बात अलग होगी। अब यहां से पढ़ते हैं, यानी जो हमने क्या कि संख्यात बहुभाग स्वस्थान स्वस्थान, जो एक भाग बचा है फिर उसका संख्यात बहुभाग विहार वत, फिर हाँ जो एक भाग बचता है फिर उसका बहुभाग बहुभाग करना। देखो अभी यहाँ पढ़ते हैं, उन्होंने एक लाइन में सबको संख्यातवा भाग कह दिया। ये जो पैराग्राफ की दूसरी लाइन हम फिर पढ़ रहे हैं, विहार व स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैकिरिक समुद्घात को प्राप्त राशियां मूल राशि के संख्यात्वे भाग प्रमाण है। यह अर्थपद यानी यह नियम सर्वत्र जोड़ना चाहिए। अभी मैंने आपको कृष्ण लेशा में पढ़कर बताया, यही बात हर एक जगह ऐसी लागू हो। पुनः अपनी अपनी राशियों को स्थापित करके उन्हें अंगुल के संख्यात्वे भाग प्रमाण अवगाहना से गुणित करके, ये जो हमने अभी अवगाहना निकाली है वो घनांगुल का संख्यात्वा भाग, उसको अंगुल का संख्यात्वा भाग कहेंगे, क्योंकि अवगाहना हमने क्षेत्रफल निकाला फिर उसको हाइट से गुणा करने पर घनफल निकाला, तो ये एक जीव की अपेक्षा हुई बात, और ऐसे जीवों की संख्या से गुणा करेंगे। तो यही लिखा है वहां पर कि अपनी अपनी राशियों को स्थापित करके, अपनी अपनी राशि ने हम जिस नरक की बात लेना है जिस हाइट वाले की लेना है उसकी अपनी राशि है, जैसे पहले नरक की लेना है या सामान्य से सभी नारकियों की बात करना है, उनको राशि स्थापित करना और उसको अंगुल के संख्या तो भाग जो अवगाहना है उससे गुणा करना, जो लब्ध आवे उसे सामान्य आदि चार लोकों को चाहिए, लोकों से नहीं, यानी चार लोग कौन से, सामान्य लोग ऊर्ध्व लोग अधो लोग और तिर्यक लोग, उनको पृथक पृथक भाजित करने पर हमें क्या निकालना है, जीवों की संख्या मल्टीप्लाइड बाय उनके अवगाहना, तो नारकियों के जीवों का टोटल क्षेत्र मिला हमको। अभी वो लोक के कितने भाग प्रमाण है, जैसे हमारे पास कोई 16 संख्या है तो 16,000 का कितवा भाग है, तो हम कहेंगे 1,000वां भाग है, ऐसे लोग को उनकी जो टोटल अभी हमने निकाली अवगाहना मल्टीप्लाइड बाय संख्या उससे भाग दो, तो असंख्यात संख्या आ गई वहां, तो ही हम कहेंगे ये लोक का असंख्यात अभाव है, ऊर्ध्व लोक का असंख्यात अभाव है, अधोलोक का असंख्यात अभाव है। समझ में आई ना? चार लोकों को अलग अलग स्थापित किया और जो हमने राशि मल्टीप्लाइड बाय अवगाहना उस संख्या से उसको भाग दिया, तो असंख्यात उत्तर आया। उसका अर्थ क्या है? वो जो राशि मल्टीप्लाइड बाय अवगाहना है पूरे लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, क्योंकि उन्होंने बता दिया। तो उस उत्तर कैसे निकाला? तो ये तरीका है उत्तर निकालने का, अर्थात पेज छठी लाइन ना नीचे के पैराग्राफ की, पेज नंबर 63 पर नीचे से भी वही छठी लाइन है। सामान्य आदि चार लोकों के तत्प्रमाण खंड करने का, कौन सा प्रमाण लिया था? राशि मल्टीप्लाइड बाय अवगाहना। इतने खंड करने पर चार लोगों का असंख्यात भाग लब्ध आता है, यानी इसका अर्थ है ये जो हमने राशि मल्टीप्लाइड बाय अवगाहना निकाली, वो जो एरिया निकाली, क्षेत्र निकाला, वो पूरे लोक का असंख्यात भाग है, ऊर्ध्व लोक का असंख्यात भाग है, अधोलोक का भी वो असंख्यात भाग है। तथा उक्त प्रमाण को मानुष लोक से अपवर्तित करने पर, अभी मानुष लोक से उसको भाग दिया, राशि मल्टीप्लाइड बाय अवगाहना बड़ी संख्या है और मानुष लोक जो है 45 लाख योजन का जो क्षेत्र है वो संख्या छोटी है, तो मनुष्य लोक से उसको भाग दिया। तो अपवर्तित करने पर अर्थात उक्त प्रमाण के मानुष क्षेत्र प्रमाण खंड करने पर असंख्यात मानुष क्षेत्र आते हैं, यानी जो नारकियों की अवगाहना मल्टीप्लाइड बाय संख्या, ये जो संख्या निकली है मनुष्य क्षेत्र की जो एरिया है उससे वो असंख्यात गुणीय एरिया होती है। तो अभी हमने ऐसा कहेंगे वो मनुष्य लोक से असंख्यात गुणा है। इतनी विशेषता है कि वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात में सर्वत्र अवगाहना को नवगुणी। क्यों नवगुणी? वेदना और ऐसा तीन गुणा और ऐसा तीन गुणा बढ़ता है, हाइट वाइज ज्यादा नहीं बढ़ता, तो तीन गुणा तीन नौ गुणा हो गया, तो क्षेत्रफल में उसको नौ गुणा कर देना। और वैकृत समुद्घात में अवगाहना को सर्वत्र संख्यात गुणी कर लेना चाहिए, क्योंकि वो तो कितना ही बड़ा, वो तो हाइट वाइज भी, क्योंकि वैकृत समुद्घात करते हैं, नारकियों की बात चल रही है, तो अपृथक विक्रिया करते तो शरीर को बड़ा भी बना देंगे विक्रिया से, तो उस समय जो वैकृत समुद्घात कहेंगे कि शरीर उन्होंने बड़ा बना दिया, तो उस समय उनकी अवगाहना भी बड़ी कहलाएगी। मारणांतिक समुद्घात का कथन इसी प्रकार जानना चाहिए।
यहाँ पर जो लिखा है वैकृत समुद्घात में अवगाहना सर्वत्र संख्यात गुणी,
मूल अवगाहना से संख्यात गुणी,
ये नौ गुणी भी तो संख्यात गुणी
वो हाँ है, परंतु वो नौ की लिमिट है, ये तो नौ से, ये तो ऐसा और ऐसा करके नौ गुणी हुई, अब ऐसा ऐसा कितना भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा हाइट भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। ये जो तीन हाथ वाला जो नारकी है वो 50 हाथ 100 हाथ वाला भी बन जाए।
पहले नरक का नारकी जो है उसकी अवगाहना वो 500 धनुष भी कर सकेगा,
अभी उसकी वैकृत समुद्र नहीं बताया, पर वैकृत समुद्र होती है उसको, कुछ भी हो सकता है ना। वैकृत विक्रिया की उसने, बड़ी विक्रिया कर दी, वो तो विक्रिया तो अंतर्मुर्त के लिए होते, पर तो कायम तो उसका इतना साइज धारण करके नहीं बैठेगा। अभी मारणांतिक में क्या विशेषता है वो बता रहे। इतनी विशेषता है कि अपवर्तन आके स्थापित करने पर पहली पृथ्वी के द्रव्य को प्रदान करना चाहिए, पहली, क्योंकि हमने देखा था वहां संख्या ज्यादा है, मैक्सिमम मेजोरिटी तो उनकी होगी, एक बात, क्योंकि मारणांतिक समुद्घात से परिणत हुए जीव के यहां विग्रह गति में राजू के असंख्यातवे भाग प्रमाण दीर्घता भी पाई जाती है। उसका अर्थ क्या है? पहली पृथ्वी के कितना नीचे है? हाँ तो वे राजू का असंख्या तो अभाव है, पहली दूसरी पृथ्वी एक राजू नीचे है, तो वहां से कोई मारणांति करेगा तो एक राजू वाला उसका मारणांति कहलाएगा, उन पहली पृथ्वी से कोई नारकी मारणांति करेगा मनुष्य तीरंचों में तो 1,80,000 उससे भी कुछ भी कितना ही कम हो जाएगा, उससे मारणांतिक होगा तो उसका किसी राजू का असंख्यात्व भाग है, कुछ लाख योजन में उसका अर्थ क्या है, राजू का असंख्यात्व भाग, इतनी दीर्घता भी पाई जाती है। इसलिए आवली के असंख्यात्व भाग प्रमाण पहली पृथ्वी के उपक्रमण काल से प्रति समय में मरने वाले राशि को भाजित करके हमने बदल दिया था, परंतु एक्चुअली प्रति समय मरने वाली राशि को भी अगर हम पहली पृथ्वी में उपक्रमण काल का ही अर्थ होता है, देखो पुनोत्तम आवलिया असंख्य यदि भागम एक तो मारणंती उपक्रम कालीन गुणी दे, ऊपर प्राकृत में पढ़ रही हूं मैं, पहली लाइन पढ़नी चाहिए, पहली लाइन तेन आवलिया, पहली लाइन प्राकृत की पहली लाइन, पहले उन्होंने क्या बताया था, मुझे मारणांतिक करने वाले के विग्रह गति में राजू का असंख्यात्व भाग दीर्घता प्राप्त होती है, एक बात तेन आवलियाय असंख्य यदि भाग मित्त पढ़म पुढ़वी उवक्कमण कालेन उवठ्य लद्धस असंख्य जा भागा विग्रहम करेंती, उसको आवली के असंख्यात भाग से भाग देना है, किसको, मारणांतिक वालों को, इसका अर्थ कहते अलग ही किया उन्होंने, वो तो आगे आया है, ये बीच वाला वहां कहां से लिया उन्होंने, एक मिनट इसलिए अवली के असंग पहली पृथ्वी के उपक्रमण काल से भाजित करके जो लब्ध आवे उसके असंख्यात बहुभाग प्रमाण जीव विग्रह को करते हैं तथा इनके भी असंख्यात बहुभाग प्रमाण जीव प्रति समय में मारणांतिक समुद्घात को करते हैं। प्रति समय में मरने वाले राशि को रखना भी, पर उपक्रमण काल से मरने वाली राशि को क्यों भाजे करेंगे, पहली पृथ्वी का उपक्रमण काल का अर्थ क्या होता है, लगातार कोई ना कोई उत्पन्न हुए,
पहले करता है वो
पर ऊपर हुआ तेना आवली असंख्य अभी तो कुछ नहीं, प्रथम पृथ्वी के द्रव्य को लिखा है हमने, परंतु उसको भी ब्रैकेट में लिखे हो, एक मिनट हमने वैसा क्यों लिखा पहली पृथ्वी को, क्योंकि वो मरने वाले भी उतने हो गए ना राउंड अबाउट जितना उपक्रमण काल होता है, उसकी संख्या कैसे निकलेंगे? ठीक है, अभी ये वाक्य ऐसे ही छोड़ देते हैं। जो लब्ध अवे वहां से पढ़ते चौथी लाइन, उसके असंख्यात बहुभाव प्रमाण जीव विग्रह को करते हैं। विग्रह को करते हैं
नहीं,
हाँ मुड़ वाले। तथा इनके भी असंख्यात बहुभाव प्रमाण जीव प्रति समय में मारणांतिक समुदाय को करते हैं।
विग्रह को करते हैं,
यानी विग्रह गति वाले हैं।
जो गति से जाते हैं वो मारणांतिक समुदाय नहीं करते
है। करते हैं ना, रुजुगति वाले भी करते हैं।
रुजुगति वाले भी भाड़न
करते हैं, परंतु उनका क्षेत्र कितना होगा?
कम होगा,
ऐसा कम हो जाएगा ना। पुनः इसे अवली आगे पढ़ते, इसे अवली के असंख्यात भाग प्रमाण मारणांतिक समुद्घात के उपक्रमण काल से गुणित करने पर मारणांतिक समुद्घात राशि होती है। इसका अर्थ होता है मारणांतिक समुद्घात का उपक्रमण राशि, एक का मारणांतिक पूरा हुआ, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, फिर चौथे ने किया, इस तरह से उसकी ऐसा होना चाहिए उसकी राशि बढ़ाने के लिए।
लेकर एक समय में अवली के असंख्यात भाग प्रमाण जीव बढ़ते हैं, तो
इसमें देखते हैं कुछ
मारणांतिक करेंगे ना।
मारणांतिक के लिए कुछ लिखा है क्या, देखते हैं इसमें हम गोमट सार में। क्षेत्र की बात है ना मारणांतिक की, हम लेशा में देखना है ना। हम कपोतलेशा में देखते हैं ना इसका, देखो देखो यहाँ उसके बारे में क्या लिखा देखते हैं। कृष्ण लेशा वालों में मारणांतिक की बात है, यहाँ तो टोटल कृष्ण लेशा या नारकी की अलग बात नहीं है, फिर भी हम यहाँ देखते हैं। उपपाद वाले जीवन के प्रमाण को मानांतिक समुद्घात के काल प्रमाण अंतर्मूर्त के जितने समय हो उनसे गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतने जीव मूल राशि के संख्या से भाग मात्र मानांतिक समुद्घात वाले जानने। अब यहाँ क्या लिखा है, अवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण पहली पृथ्वी के उपक्रमण काल से, वहां तो भाजित किया था, ख्याल नहीं आ रहा क्योंकि नारकियों में अलग से लिखना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं, कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पर मेरा भी, यानी किसका कितना भाग निकालना है ना, उसकी बात है।
दूसरा क्वेश्चन भी था कि 63 पेज पर हमने अंगुल के संख्या से बात करना प्रमाण अवगाना से गुणित करके 63 पेज पर
लास्ट
पैराग्राफ की
चौथी लाइन
अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, तो वहाँ पे अंगुल के संख्यात विभाग प्रमाण क्यों लिया? वो
एक जीव क्या उगाना,
यहाँ पे तो नारकी में तो संख्यात अंगुल हो जाएगा ना, तीन हाथ इन टू विष्कम,
वो तो इसके कर दे प्रमाण अंगुल कर लेते ना।
अच्छा, ये प्रमाण अंगुल की बात है,
और वो घनांगुल करते उसका संख्या तो अभाव पहले से करते आए हैं ना, क्योंकि क्षेत्र हमको लास्ट में निकालना है, तो प्रमाणांगुल में एक क्षेत्र निकालना पड़ेगा, क्योंकि लोग का असंख्यात्व भाग वगैरह जो लेते हैं वो प्रमाणांगुल में करना पड़ता है, इसलिए उसमें प्रमाणांगुल कन्वर्ट करते हैं हम। अब यहाँ हम 64 पेज पर ऊपर से 3, 3, 6, 7वीं लाइन में आते हैं, यानी वो कितने वे भाग प्रमाण कौन सी राशि वो वहां बता दी उन्होंने, पुनः नारकियों के मुख विस्तार से 9 गुणे राजू के असंख्यात वे भाग से मारणांतिक राशि को गुणित करने पर मारणांतिक समुद्घात क्षेत्र होता है, यह युक्ति से कहा है। मुख्य विस्तार का 9 गुणा का अर्थ होता है उनका विष्कम्भ का 9 गुणा किया ऐसा उन्होंने। हाँ, मारणांतिक राशि को गुणित करने पर वो कितना है, तो राजू का असंख्यात भाग है उसमें बोलो आप। वास्तव में तो उपपाद की अपवर्तना के स्थापित करने पर पल्योपम के असंख्यात भाग से दूसरी पृथ्वी संबंधी द्रव्य के भाजित करने पर तीर्यंचों में से दूसरी पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, नारकियों के मारणांतिक से नारकियों के उपपाद की बात है। उपपाद कब कहेंगे, मरकर वहां उत्पन्न हुआ, तो नारकी में उपपाद मुख्यतः तो तीर्यंचों की होगी। बड़ी अवगाहना वाले तीर्यंचों को हम नरक में ले जाएंगे, तो और उनका उपपाद लंबा करना है ना, तो दूसरे नरक में लिया। वहां दूसरा नरक कितना है, तो एक राजू नीचे है, तो उसका उपपाद दंड एक राजू वाला हो सकता है, यही बात कहते हैं। देखो फिर से, वास्तव में तो उपपाद की अपवर्तना के स्थापित करने पर पल्योपम के असंख्यात भाग से दूसरी पृथ्वी संबंधी द्रव्य के भाजित करने पर, मैंने यह दूसरी पृथ्वी का द्रव्य को भाग दिया ना, वैसे हमने वहां पहली पृथ्वी के द्रव्य को भाग दिया था ऊपर। तीर्यंचों में से दूसरी पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले मिथ्यादृष्टि जीव होते हैं, यानी वहां उत्पन्न होने वाले जीवों की बात है। पुनः पल्योपम के असंख्यात भाग रूप एक दूसरा भागहार स्थापित करके एक कम से गुणित करने पर, भाग देकर एक कम से गुणित करना है, असंख्यात बहुभाग हुआ। हमने पहले देखा 9 से भाग दो 8 से गुणा करो तो संख्यात व बहुभाग हो जाता है। अब यहां हम असंख्यात से भाग देंगे और एक कम असंख्यात से गुणा करेंगे तो असंख्यात बहुभाग हो जाएगा। तो विग्रह गति में मारणांतिक समुद्घात से उत्पन्न होने वाले तीर्यंच मिथ्यादृष्टि जीव होते हैं।
यहाँ पे एक समय में तो अवली के असंख्यात में भाग प्रमाण मरते हैं,
उसकी बात नहीं चल रही यहाँ पर, जीवों की संख्या कितनी वो निकालनी, टोटल राशि को पल्ले का असंख्या तो भाग देंगे उसकी बात चल रही है, उनकी संख्या निकालनी है। देखो फिर से यहाँ क्या लिखा, उपपाद की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, उपपाद की अपवर्तना के स्थापित करने पर पल्लोपम के, मैं फिर तीन चार लाइन ऊपर गई हूँ, दूसरी पृथ्वी संबंधी द्रव्य के भाजित करने पर तिर्यंचों में से दूसरी पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले मिथ्या दृष्टि जीव है, और फिर और एक दूसरे असंख्या से भाग देकर एक कम से गुणित करना है असंख्यात बहुभाग, विग्रह गति में मारणांतिक समुद्घात से उत्पन्न होने वाले तिर्यंच मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, यानी टोटल वहां जितने जीव उत्पन्न हो गए उनमें से मारणांतिक समुद्घात से विग्रह गति करने वाले जीव ली एक बार, पुनः एक दूसरे पल्लोपम के असंख्यात भाग को भागार, मैं फिर पूरे पढ़ के फिर आपको अपनी भाषा में बताऊंगी, भागार रूप से स्थापित करने पर तिर्यंचों में से विग्रह गति में राजू के प्रतिभाग रूप से मारणांतिक समुद्घात करके उत्पन्न होने वाले तिर्यंच मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, ऐसा करना कथन करना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र राजू मात्र आयाम से युक्त दूसरा दंड पाया जाता है। ये दूसरा दंड क्या होता है, ये मारणांतिक कर रहे ना कोई तीरंश नरक में मारणांतिक कर रहे, कोई यहाँ का तीरंश मरकर यहाँ उत्पन्न हो रहा है, तो पहले ऐसा जाएगा और फिर नीचे राजू तक ऐसा चलेगा, यहाँ कितना जितना जो कुछ होगा मारणांतिक करके फिर विग्रह गति में आया है, तभी उसको नारकी कहेंगे, वो नारकी का उपपाद कहलाएगा। तो पहले समय में प्रदेश यहाँ से यहाँ चले गए मरण का समय यहाँ पर, और तभी ये उपपाद वाला दंड ऐसा फैला हुआ, तो दूसरे नरक तक इन्हें एक राजू वाला दंड लिया हुआ, दूसरी पृथ्वी को इसलिए लिया कि पहली पृथ्वी तो संख्या की योजन वाली हो जाती है। पुनः इस द्रव्य को नौ गुणा राजू से गुणित, नौ गुणा निकाली ने नौ राजू से गुणित क्या है ऊपर क्या है नवरज्जु गुणी देना है, एदम दवम तिरिक्ख अवगाहन मुह विथारेण नवरज्जु गुणी देना गुणे दवम, पुनः इस द्रव्य को नौ राजू से गुणित तिर्यंचों की अवगाहना के मुख विस्तार से गुणित करना चाहिए। हमने यहाँ उसमें ऐसा करेक्शन किया था, पुनः इस द्रव्य को ऊपर लिखा ना नवरज्जु गुणी देना, नवरज्जु गुणी देना तिरिक्ष अवगाहन मोह विस्तारेना, इस द्रव्य को नौ राजू से गुणित तिर्यंचों की अवगाहना के मुख विस्तार से गुणित करना चाहिए। ये नवरज्जु गुणित तिर्यंचों की अवगाहना है, यहाँ पर अपवर्तना पहले के समान करनी चाहिए, वो नौ गुना इसलिए गुना करना उनकी तो वेदना समुद्घात के साथ वो ले लेना, ये सारा पेज नंबर 64 हमने कंप्लीट किया अभी। हाँ वो बराबर है, पहले के करेक्शन ऐसे रखो, पेंसिल से ही किए है ना हमने, देखो देखो नीचे से तीसरी लाइन में इस द्रव्य को नव गुणी लिखा है ना, वो तो नव गुणी ने नव रज्जु गुणी देना है ना, नव राजू से गुणित वो गुणी निकाली देना, उसमें से पेंसिल से करना, कुछ पेन से मत करना करेक्शन, कोई पेन से नहीं करना, तिर्यंचों की अवगाहना के मुख विस्तार से गुणित करना चाहिए, गुणित शब्द डालो, क्योंकि इसके लिए ऊपर प्राकृत की जो है मैंने अर्थ करके बताया आपको, प्राकृत के समान इसका अर्थ अभी लगता है। यहाँ पर अपवर्तना पहले के समान करनी चाहिए। अब ये मिथ्या दृष्टि की बात अभी तक हमने देखी नारकियों में, मिथ्या दृष्टियों का स्वस्थान स्वस्थान विहार व स्वस्थान वेदना कषाय वैक्रियक और मारणांतिक, इनकी चर्चा हुई। मारणांतिक में मुख्यतः किसके लिए, देखो अन्यत्र जो है स्वस्थान वगैरह में संख्या किसकी ज्यादा है, पहले नारकी। आप कहेंगे मारणांतिक में उसी की ले लो, तो कहते वो कितना करेंगे, तो संख्या योजन क्यों करेंगे कि लाख योजन लाख, तो इतने उनकी ज्यादा हो जाएगी मारणांतिक, कितना करेंगे, इसलिए दूसरे नरक की अपेक्षा से बात की, क्योंकि वहां तो कुछ राजो प्रमाण हो जाते हैं। अभी उपपाद में लेना है, नारकियों में जो जन्म लेते हैं तो वहां तीर्यंचों की संख्या ज्यादा है, उसमें जन्म ले असंख्यातों में मनुष्य हो गए तो संख्या जाएंगे, तो इसलिए असंख्यातों की तीर्यंचों की अवगाहना ली जो मेजोरिटी की, उसकी जो एवरेज हम निकालेंगे संगी पंचेंद्रियों की, या बड़े अवगाहना वाले लेंगे हम, तो वो एक राजु तक वहां उनका उपपाद दंड होगा, तो उस समय उनकी वेदना या कषाय समुद्घात करके उन्होंने वहां जन्म लिया, इसलिए उसको 9 से गुणित करके वो एरिया कैलकुलेट की उन्होंने, तिरियंचों की अवगाहना डिवाइडेड बाय उनकी गुणित उनकी राशि, और गुणित वो जो 9 गुणा उनका जो कुछ हमने देखी है, ये तो कैलकुलेशन को हम गौण भी कर देते हैं, तो किसकी मुख्यता कहां पर करनी उसकी हमने चर्चा कर दी। अब ये तो मिथ्या दृष्टि की बात हुई, अब सासाधन वालों की बात कभी बताने जा रहे हैं। 65 पेज पर आना। इसी प्रकार सासाधन सम्यक दृष्टि नारकियों के भी स्वस्थान स्वस्थान स्वथान हुआ है, स्वस्थान स्वस्थान आदि समझना चाहिए। स्वस्थान के बाद स्वथान हुआ है ना, स्वस्थान करो, आपने किया है क्या? स्वस्थान स्वस्थान स्वथान हुआ है, ऑर्डिनरी 65। हाँ मिला। अब सासाधन में क्या होगा क्या नहीं होगा?
उत्पाद नहीं होगा,
उपपाद नहीं होगा। सासाधन के साथ नरक में कोई जन्मता नहीं है, तो मारणांतिक होगा कि नहीं सासाधन में? नारकी क्यों नहीं होगा?
मारणांतिक करेगा ना,
नारकी मरण के पहले प्रथम उपशम संबंध तो प्राप्त करके सासाधन में आए, और वहां से मनुष्य तीन इंचों में, वो तो मारणांतिक कर सकते हैं। मारणांतिक को लेना, उपपाद को नहीं लेना। अब पढ़ेंगे। इसी प्रकार सासाधन समय दृष्टि नारकियों के भी स्वस्थान स्वस्थान आदि समझना चाहिए, यानी स्वस्थान स्वस्थान फिर विहार व स्वस्थान वेदना कषाय वैक्रिक मारणांतिक, इतनी विशेषताएं कि उनके उपपाद नहीं पाया जाता। अर्थ समझ में? सासाधन में कोई मरकर नरक में नहीं जाता। जब मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त राशि के लाने की इच्छा हो, तब 2 बार आवली के असंख्यात भाग को परस्पर गुणित करके और उसे पूर्व राशि का भागहार स्थापित करके उसके योग्य आवली के असंख्यात विभाग से गुणित करने पर मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त राशि होती है। शेष विधि पहले के समान है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टि नारकियों के भी, अभी इनमें क्या विशेषता होगी?
मारणांतिक और उत्पाद नहीं होगा।
हाँ, मारणांतिक नहीं होगा, न उपपाद होगा। स्वस्थान स्वस्थान आदि जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। भी नहीं होता यानी सासाधन में उपपाद नहीं होता, इनके उपपाद भी नहीं है और मारणांतिक भी नहीं है। असंयत समय दृष्टि नारकियों के, स्वस्थान स्वस्थान आदि, सासाधन समय दृष्टि नारकियों के, स्वस्थान स्वस्थान आदि के समान है। इतनी विशेषता है कि इनके उपपाद पाया जाता है, तो उपपाद कितने, उनका दंड कितना होगा, उपपाद का कितना नीचे तक जा सकते हैं, सम्यक्त से सम्यक्त के साथ, ये नए लोग बताएंगे, सम्यक्त के साथ कौन से नरक में उत्पन्न हो सकता है, पहली नरक, वो भी क्षायिक होने की कंडीशन, बिना क्षायिक के कोई नरक में सम्यक्त लेकर नहीं जा सकता, ख्याल में आते हैं बात। तो पहला नरक कितना है नीचे, संख्या त्योजन कहेंगे हम उसको। तो यहाँ क्या कहते, देखो इतनी विशेषता इनका उपपाद पाया जाता है, मारणांतिक समुद्रात और उपपाद में सम्यक दृष्टि नारकी संख्यात ही पाए जाते हैं,
मनुष्य की,
क्योंकि उपपाद में तो क्षायिक होने चाहिए, क्षायिक के साथ वहां जन्म लेंगे
मनुष्य से,
परंतु मारणांतिक में क्या होगा, सम्यक दृष्टि नारकी मारणांतिक कहाँ करेंगे,
मनुष्य,
मनुष्यों में ही उत्पन्न होंगे, और मनुष्यों में उत्पन्न हो गए तो उनका वो दंड भी लेंगे, तो ऐसे बीच में से ऊपर चले जाएंगे मानुष, और उनकी संख्या तो मिनिमम संख्यात होगी, क्यों, नार की समय दृष्टि भले असंख्यात है पर मरकर आएंगे कहाँ, पर्याप्त तो मनुष्यों में, पर्याप्त तो मनुष्य ही संख्यात है, उसमें सम्यक से सात जन्म लेने वाले वो भी नरक से आने वाले कितने लिमिटेड हो गए, देव से आने वाले मेजोरिटी हो गए, है ना, नरक से सम्यक्त के साथ मनुष्य में, क्योंकि मनुष्य पर्याप्त है, तो एट ए टाइम जन्म लेने वाले जीव बिल्कुल गिने चुने हो गए, यही बात है यहाँ पर, इसलिए संख्यात ही पाए जाते कहा, वो नहीं विधेय में जाएंगे ना समय दृष्टि नारी, अभी वर्तमान में कोई है नारकी समय दृष्टि मरकर कहाँ जाएगा, विदेह में जाएगा, ना ना ना, यहाँ से कोई कर्म भूमि से जाने वाले मिथ्या दृष्टि जाते, अरे वहाँ पर भी, वहाँ तो तीर्थंकर जन्म दे कि नहीं, वहाँ पर भी पंच कल्याणक होगी कि नहीं होगी, ख्याल में आते हैं बात, वहाँ देव और नरक से समय दृष्टि आएंगी वहाँ पर, परंतु यहाँ के ये क्यों हमेशा बताया जाता है विदेह में मिथ्या दृष्टि जाता है, हमारे यहाँ से कर्म भूमि से कर्म भूमि में जाने वाला जो मनुष्य, मनुष्य कर्म भूमि का जीव, और वो कर्म भूमि का ही मनुष्य होकर उत्पन्न होता है कर्म भूमि का, तो नियम से मिथ्या दृष्टि होगा, ख्याल में है ना, चौथे काल का भी कोई मिथ्या दृष्टि जीव मान लेते विदेह में जाना है, वो भी मिथ्यात्व के साथ ही जाएगा ना, एक तो सम्यक तो होने के बाद आयु बांधेगा तो देव की बांधेगा, पहले मनुष्य आयु बांधिए बाद में सम्यक तो प्राप्त किया चौथे काल में भी किसी ने, यदि क्षायिक होगा तो भोग भूमि में जाएगा सम्यक तो लेकर, वो भी अगर क्षायिक प्राप्त नहीं करेगा तो सम्यक तो छूट जाएगा मनुष्य में जन्म लेगा, कहीं का भी हो सकता है जो आयु बांधे की जितनी हिनाधिक बांधी,
यहाँ पर आपने जो बताया कि मारणांतिक समुद्र उपपाद में सम्यक दृष्टि नार की संख्यात ही पाए जाते हैं, तो सम्यक्त्व के साथ जन्मने वाले नार की संख्यात ही है, और वो भी क्षायिक सम्यक दृष्टि होने चाहिए।
हाँ।
तो वो पहले या जो कृतकृत्य वेदक हो गए उसकी बात निग्लेक्ट करते हैं, तो मेरा ये प्रश्न है ऐसे क्षायिक सम्यक दृष्टि नार की पहले नरक में कितने हैं संख्या की अपेक्षा से,
देखो ऐसे टाइम उत्पन्न होने वाले तो संख्यात हो गए, उन तो वहाँ कोई जन्मे फिर दूसरे कोई आए फिर हर छह महीने में कुछ दो चार आते रहे मान लेते हैं, ऐसे असंख्यात जीव शायिक समय दृष्टि पहले नरक में है, पहले नरक की बात है। अब यहाँ क्या कहते हैं, नरक से निकलने वाले मनुष्य में आने वाले वो तो वेदक सम्यक्त्व के साथ आएंगे, नरक से वेदक सम्यक दृष्टि कोई भी, वो तीर्थंकर की बात नहीं लेना, वो मरकर मनुष्य में सम्यक तो लेकर आते तो छठे नरक तक से आ सकते हैं, सातवें नरक का नारकी सम्यक दर्शन हो तो भी मिथ्यात्व में जाता है बाद में आयु बांधकर मरता है मिथ्यात्व के साथ, वो सम्यक्त्व लेकर नहीं आ सकता। तो छठे नरक तक के नारकी सम्यक्त्व लेकर आएंगे तो कहाँ आएंगे? तीरंज में तो सम्यक्त्व के साथ जा नहीं सकते, मनुष्य में आएंगे। तो मनुष्य में आएंगे तो मनुष्य पर्याप्त है, यहाँ तो लिमिटेड ही संख्या है, तो अधिक नारकी मरकर कैसे आएंगे यहाँ? तो गिने चुने आने वाले भी थोड़े ही आएंगे, ये कहना चाहते, संख्या होगी वो। शेष कथन जान कर करना चाहिए। उनका क्षेत्र भी अगर निकाल दे ना, एक तो गिने चुने हैं और मनुष्यों में मारणांतिक करेंगे, भले छठे नरक से भी मनुष्य में मारणांतिक करेंगे, तो हाइट वाइज उसकी एरिया कितनी हुई? छठे नरक से पांच राज्य। फिर भी पांच राज्यों कहने से वो तो सिंगल, उसकी जितनी अवगाहन है उतने, पर बीच वाले मनुष्य लोक में से ऊपर आते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए वो क्षेत्र भी वो लोक का संख्या का भागी हो जाता है, पूरे एरिया कवर नहीं होता, स्पर्शन में भी उसको ज्यादा नहीं लेते। अभी आगे करते, इसी प्रकार ऊपर पढ़ना है ना, एवं सप्तसु पुढ़वीसु नैरगिया, इसी प्रकार सातों पृथ्वियों में नारकी जीव लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। सातों पृथ्वियां क्यों कहा? क्योंकि गति मार्गना की अपेक्षा जो एक एक गति है उसमें भी अनेक आलाप होते हैं, उसमें भी अलग भेद होते हैं। पहले सामान्य नारकियों की बात की, उसमें पहला के दूसरे बात नहीं की, अब कहेंगे पहले नरक की, दूसरे नरक की, तीसरे नरक की अलग अलग से बात करेंगे, और उसकी अगर हम क्षेत्र घटित करेंगे वो भी लोक का असंख्या का भाग ही हो जाएगा। सूत्र में एवं ऐसा ही, क्योंकि पूर्व सूत्र में, पूर्व सूत्र देख लो,
अच्छा अच्छा
सूत्र में ज्यादा नहीं लिखते, अभी उसका भाषांतर किया तो हमको समझने के लिए उन्होंने खोल कर बताया है हिंदी ट्रांसलेशन में, उसको पांच नंबर का सूत्र हुआ था पेज नंबर 56 पर, वहाँ ये पूछा गया था आदेशेण मिला क्या, पेज नंबर 56 पर प्राकृत में 56 56। देखो प्राकृत में मूल में देखो, आदेशेण गदियाणु आदेण निरय गदीये नेरयेसु मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जाव असंजद सम्मा इट्ठी, यानी पहले से चौथे गुणस्थान तक के जीव केवड़ी खेतते हैं, कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो लोगस्य असंख्ये यदि भागे लोक के असंख्यात् भागे मान, एवं इसी प्रकार सप्तसु पुढ़वीसु नैरगिया, सातों ही पृथ्वियों के नारकियों के बारे में जानना चाहिए। एवं इस प्रकार का अर्थ क्या है? लोक के असंख्यात् भाग, अकेले पहले नरक की बात करो, अकेले दूसरे की, अकेले तीसरे की, तो इसलिए लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। हमें इतना ही बताना है, उनकी भले वो एरिया अलग अलग कैलकुलेशन क्यों ना हो जाए, उसका फाइनल रिजल्ट क्या है? लोक का असंख्यात भाग। चूंकि यह सूत्र द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन कर लेकर स्थित है, क्या कहना चाहते हैं? सामान्य कथन है लोक का असंख्यात भाग। अब जो लोक का असंख्यात भाग सातवीं पृथ्वी के लिए कहा, जो लोक का असंख्यात भाग पहली पृथ्वी के लिए, उसकी संख्या अलग अलग होगी, क्षेत्र जुदा जुदा होगा। जैसे हम कहेंगे हमारे पास 100 संख्या है और 100 का संख्यात भाग करो, तो 5 भी 100 का संख्यात भाग है और 50 भी 100 का संख्यात भाग है, 20 ले लो 40 ले लो वो भी 100 का संख्यात भाग है, परंतु उसकी सब वैल्यू अलग अलग है। ऐसा ही यहाँ लोक का संख्या का भाग, ये तो सामान्य से कथन हुआ, इसको कहेंगे द्रव्यार्थिक नय का कथन, पर उसकी एक्चुअल वैल्यू हर एक की अलग अलग होगी। यही कह रहे कि यह सूत्र द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन लेकर स्थित है, इसलिए सातों पृथ्वियों की प्ररूपणा, प्ररूपणा यानी उनका कथन स्टेटमेंट, नारकियों की ओग प्ररूपणा तुल्य है। नारकों की ओग प्ररूपणा करते हैं सामान्य नारकियों की प्ररूपणा, इन जनरल नारकियों का जो कथन है और हरेक नरक का जो अलग अलग कथन है वो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा समान है। क्या समानता है? लोक का असंख्यात भाग। यह कथन घटित हो जाता है। पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करने पर तो पर्यायार्थिक यानी एक्चुअली उसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो पहली पृथ्वी की प्ररूपणा नारकियों की ओग प्ररूपणा के तुल्य है, क्योंकि पहली पृथ्वी में सामान्य प्ररूपणा से सर्व गुणस्थानों की सर्व पदों की अपेक्षा समानता पाई जाती है। क्योंकि जो सामान्य से नारकियों में कहा वो पहली पृथ्वी में घटित होता है, क्योंकि सामान्य से नारकियों में हमने पहले से चौथे गुणस्थान तक वो उपपाद को भी लिया था ना? तो इसे पहले नरक में भी उपपाद घटित होता है सम्यक्त्व के साथ, नीचे के नरकों में सम्यक दृष्टि के उपपाद नहीं होगा। तो पहली पृथ्वी में और सामान्य से नारकियों में ये समानता है, किंतु स्वस्थान स्वस्थान आदि पदों की अपेक्षा द्वितीय आदि पांच पृथ्वियों की प्ररूपणा, द्वितीय आदि पांच यानी छठे तक की ओग प्ररूपणा के पदों के समान है, उसके समान नहीं है, उसके पदों के समान। पद कौन से होते हैं? स्वस्थान स्वस्थान, विहार व स्वस्थान, ये सभी जो पद है उसके अपने अपने अलग पद वहां देखने पड़ेंगे, क्योंकि उन पृथ्वियों में यानी दूसरी तीसरी आदि पृथ्वियों में सम्यक दृष्टियों का असंयत सम्यक दृष्टियों का उपपाद नहीं होता, यानी कोई जीव सम्यक्त्व के साथ दूसरे तीसरे आदि नरकों में उत्पन्न नहीं होते, ये उसका अर्थ है। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी की प्ररूपणा भी नारक सामान्य प्ररूपणा के तुल्य नहीं है, सामान्य नरक की जैसे ट्रीटमेंट है वैसा सातवीं नरक के लिए नहीं है, क्योंकि वहां तो मारणांतिक तो करेंगे ना, सासाधन में भी मारणांतिक नहीं होगा और चौथे गुणस्थान में भी मारणांतिक नहीं होगा सातवीं पृथ्वी में, ये उसकी विशेषता है। सामान्य में तो हमने लिया था सासाधन वाले नारकी तो तिरियंशों में भी मारणांतिक करेंगे, परंतु सातवें नरक वाले तो मिथ्या तो में ही मारणांतिक और मरण करेंगे।
यहाँ पर जो पहला वाक्य है कि उन पृथ्वियों में यानी दो से छह तक की पृथ्वियों में असंयत सम्यक दृष्टियों का उपपाद नहीं है, इसका अर्थ ये हो गया कि क्षायिक सम्यक दृष्टि क्यों न हो वो दूसरे तीसरे में नहीं जाएगा,
कहीं नहीं जाए, पहले में ही
जाता है। हमने जो देखा था कि पहले में ही जाता है, इसको इससे बल मिलता है,
पहले में जाता है वो हमने इसके लिए भी देखा तीर्थंकर की तीर्थंकर प्रकृति वाले के लिए देखा।
हाँ,
ये तो नियम ही है, पहले पृथ्वी में ही जाता है, अन्य तो कहीं जाता ही नहीं है, नियम है ये। सम्यक्त्व के साथ पहले ही पृथ्वी में जाता है और वो भी क्षायिक का नियम है, वो भी हमने दोनों नियम पहले देखे थे।
लेकिन उस बात को इससे बल मिलता
नहीं, ये तो वो स्टेटमेंट से ये सिद्ध होता है, ये बात उससे सिद्ध होती है।
इन बातों से क्या बात सिद्ध हो रही है? क्षायिक सम्यक दृष्टि,
क्योंकि उसका कारण बताया कि वहाँ उसका उपपाद नहीं है, ये कारण
तो मैं कह रहा हूँ आपको,
वो जो कारण वहाँ हमने देखा वो यहाँ अप्लाई होता है, इसके द्वारा वो प्रूव नहीं हो रहा है। क्योंकि उन पृथ्वियों में क्योंकि लिखा है ना यहाँ पर, असंयतों का उपपाद नहीं होता। अब कहते हैं कि सातवीं पृथ्वी की भी प्ररूपणा सामान्य के समान नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सातवीं पृथ्वी में सासाधन सम्यक दृष्टि संबंधी मारणांतिक पद का और असंयत सम्यक दृष्टि संबंधी मारणांतिक और उपपाद पद का अभाव है, क्योंकि सातवीं पृथ्वी वाले मारणांतिक के काल में नहीं सासाधन में मारणांतिक भी नहीं करेंगे, उनके प्रथम उपशत नपुंसक तो भी प्राप्त होता है लाइफ टाइम में, कभी उनको सासाधन भी प्राप्त होता है पर मरण के समय में नहीं, मरण के अंतर्मूर्त पहले तो मिनिमम वो तो मिथ्यात्व में जाएगी ही जाएंगे और फिर वहां आयु का बंद करेंगे, बाद में अंतर्मूर्त के बाद मरेंगे, वहां से निकलेंगे तो मिथ्यात्व में ही निकलेंगे, ये नियम है। सातवें नरक छठे तक का नारकी सम्यक को लेकर भी वहां से निकल सकता है, सम्यक्त्व के साथ मनुष्य में आ सकता है, सासाधन के साथ भी मनुष्य तिरंश में आ सकता है, सातवें वाला नहीं, इसलिए उसके यहाँ निषेध कर दिया। यहाँ पर आगे पढ़े ना, सातों पृथ्वियों की अवगाहना का भेद हमने जो देखे ना हर एक पहले सामान्य से बात की, वहाँ मेजॉरिटी हमने पहली पृथ्वी की बात देखी थी। अब हर एक पृथ्वी का अलग अलग जब कैलकुलेशन करना है तो वहाँ का उसकी अवगाहना लेना, और वहाँ की अवगाहना लेकर वो पृथ्वी कितने नीचे है, दूसरी पृथ्वी एक राजू नीचे है, तीसरी पृथ्वी दो राजू, उसका कैलकुलेशन करना। तो कहते अवगाहना का भेद और मारणांतिक तथा उपपाद का स्थापित होने वाला राजू भेद, समझ में है? राजू भेद का अर्थ क्या है, वो कितना राजू नीचे है। और द्रव्य विशेष का कथन करना चाहिए, द्रव्य विशेष है उनकी अपनी अपनी संख्या। जब एक पर्टिकुलर नरक की बात करनी है, उसका क्षेत्र देखना है, तो वो वहां की अवगाहना, वहां की संख्या और वो नरक कितना नीचे, कितना राजू नीचे है, इन सब की वहां विशेषता जाननी चाहिए। पहली पृथ्वी के मिथ्या दृष्टियों का मारणांतिक क्षेत्र तिर्यक लोक से असंख्यात गुणा है, क्योंकि मारणांतिक समुद्र को प्राप्त राशि को प्रतरांगुल के संख्यात्वे भाग से गुणित करके पुनः जगत श्रेणी के संख्यात्वे भाग से गुणित करने पर तिर्यक लोक से असंख्यात गुणा क्षेत्र पाया जाता है। देखो, क्योंकि उनकी संख्या लेना है ना वहां पर, तिर्यक लोक से असंख्यात गुणा क्यों कहा, तिर्यक लोक कितना, एक राजू बाय सात राजू वाला है, यानी उस तिर्यक लोक की एरिया हमने कैलकुलेट की थी, जगत प्रतर मल्टीप्लाइड बाय एक लाख का सातवां भाग, इतने योजन। अभी यहाँ क्या लिखना है, उसे तिर्यक लोक से भी असंख्यात गुणा, क्योंकि यहाँ तो नारकियों की संख्या लेना है, मारणांतिक करने वाले, मारणांतिक तो अंतर्मूर्त होता रहता है, तो उतने काल में मरकर करने वाले उनका मारणांतिक होता रहेगा, उनकी संख्या ज्यादा है, तो मारणांतिक कहाँ तक करेंगे वो, तिर्यंशों में मारणांतिक करेंगे। तो भले वो पहला पृथ्वी है, पहली पृथ्वी थोड़ी नीचे है, कुछ लाख योजन है, वहाँ तो एक लाख था उसके, ये तो अभी बढ़ गई, परंतु उनकी संख्या भी एक्स्ट्रा हो जाती है ना, केवल एरिया नहीं कैलकुलेट करनी, जीवों की संख्या, हमने तिर्यंशों की भी संख्या देखी थी, जगत प्रतर के असंख्या तो विभाग प्रमाण तो होते हैं तिर्यंश, और नारकी भी उनकी यथायोग्य हमने देखे थे, उसके हमने वो अवगाना विष्कम्भ वगैरह, यानी जगत श्रेणी से असंख्यात गुना तो होते ही होते हैं नारकी। इसलिए तिर्यक लोक से असंख्यात गुना हो जाता है, तथा एक प्रदेश से लेकर उत्कृष्ट रूप से अपनी उत्पत्ति के प्रदेश तक मारणांतिक क्षेत्र का आयाम पाया जाता है। इसलिए भी पहली पृथ्वी के मिथ्या दृष्टियों का मारणांतिक क्षेत्र तिर्यक लोक से असंख्यात गुणा है, और यह कथन असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि महामत्स्य के क्षेत्र स्थान की प्ररूपणा अन्यथा बन नहीं सकती।
एक प्रदेश पता है ना, एक प्रदेश से लेकर
मारणांतिक समुद्र एक प्रदेश तक ही किया उन्होंने,
नहीं पर एक प्रदेश किसे करेंगे नारकी, नारकी आएंगे तो मध्य लोक में ही आएंगे मारणांतिक कर, वो तो तीन चलाएंगे ना, ये तो नारकी की बात है, नारकी तो करेंगे तो मध्य लोग तो करेंगे ना,
यानी वो जगह ने मारणांतिक उतना भी हो सकता है, वहां तक फैलते ऐसा नहीं है, ऐसा लेना
नहीं, ले सकते
ये पहली बार मारणांतिक में जगन ने एक प्रदेश लिया। यहाँ लिखा ना
सीरियंस
में जाते हैं
और मध्य लोक में आएंगे ना, तो
यहाँ क्या लिखा देखो ना, मारणांतिक समुद्रात को प्राप्त राशि को वो तो गुणा करने पर तिर्यक लोक से असंख्यात गुना क्षेत्र पाया जाता है। मिला हुआ नीचे से छठी लाइन, तथा एक प्रदेश से लेकर उत्कृष्ट रूप से अपनी उत्पत्ति के प्रदेश तक, उसका अर्थ क्या होता है?
तो एक प्रदेश पारणांतिक करके
वापस नहीं, प्रदेश फैले रहे बस, उस दिशा में फैले है बस, ऐसा उसका अर्थ ले सकते हैं। मानना थी कि वो मिनिमम इतना लिया, कैसे हुआ एक प्रदेश क्यों लिया वहां पर? मारणांतिक में उन्होंने एक प्रदेश से लिया एक प्रदेश से अपनी उत्पत्ति तक,
तो जगत एक प्रदेश की मारणांतिक करेगा।
देखो अभी हम यही पर ये बात आई पहले हमेशा हम जो कैलकुलेट करते थे मैक्सिमम कैलकुलेट करते थे, यहाँ लिखा ना स्पष्ट शुभ एक प्रदेश से लेकर उत्कृष्ट रूप से अपनी उत्पत्ति के प्रदेश तक मारणांतिक क्षेत्र का आयाम पाया जाता है। ऊपर भी यही लिखा था ना,
ऊपर भी लिखा है
पदरंग संगीतोत्ती एक प्रदेश आदि कादून ज्या उक्कसेन सग उत्पत्ति प्रदेशोत्ती मारणंतीय खेतायाम अस्सुवलंभादो यानी वो थोड़ा मारणंतिक भी करता है, इसका अर्थ हुआ ना मालूम नहीं है, इसलिए भी पहली पृथ्वी के मिथ्या दृष्टियों का मारणांतिक क्षेत्र तिर्यक लोक से असंख्यात गुना है, यह कथन असिद्ध भी नहीं है। यानी वो एक प्रदेश लेंगे तो भी असंख्यात गुना सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जीवों की संख्या की अपेक्षा और उनकी अवगाहना की अपेक्षा, क्योंकि महामत्स्य के क्षेत्र स्थान की प्ररूपण अन्य स्थान ये तो हो गया, वहां पर चूंकि जगत श्रेणियों के असंख्यात वे भाग आयाम रूप से मारणांतिक समुद्रात को करके मरने वाले जीव बहुत है, इसलिए तिर्यक लोक का असंख्यात वा भाग बन जाता है।
देखो महामत्स्य के क्षेत्र स्थान की प्ररूपण अन्यथा बन नहीं सकती, महामत्स्य करेगा तो वो तो तिर्यक से जाएगा ना,
महामत्स्य का क्षेत्र स्थान यानी महामत्स्य के बारे में जब क्षेत्र की प्ररूपणा आती है, महामत्स्य सातवें नरक में जाने वाला उसकी बात वहाँ है, परंतु वहाँ मरने वाले और वहाँ जाने वाले जीव बहुत कम हो गए, वहाँ तो तिर्यक लोक का असंख्यात वा भाग घटित किया था और यहाँ तो पहली पृथ्वी के मिथ्या दृष्टियों का तिर्यक लोक से असंख्यात गुणा है, क्योंकि सातवें नरक में मरकर जाने वाले जीव कम हो गए और ये पहली नारकी से पहले नरक से मरकर तिर्यकों में आने वाले जीव असंख्यात गुणा हो गए, इसलिए उसका क्षेत्र लंबा होने पर भी जीव कम है। ख्याल में आती है बात? ये बात वो तिर्यकों में आ जाएगी शायद महामत्स्य के कथन में। हाँ अभी यहाँ तो नारकी की प्ररूपणा चल रही है, अभी तिर्यक की बात आ गई। यानी ये बात जरा मारणांतिक के बारे में, एक प्रदेश से अपने उत्पत्ति तक मारणांतिक करता है, ये बात थोड़ी नई लगी हमें यहाँ पर।
क्या सोल्यूशन निकले एक प्रदेश
में? कुछ नहीं, वो तो ये ऐसा ही स्टेटमेंट है तो ऐसा ही हम यहाँ लिखेंगे, स्वीकार करेंगे।
ऊपर लिखा है एक प्रदेश,
लिखा है ना, एक प्रदेश मादिम कादुना जहाँ उपकस्य न सग उत्पत्ति पदेशो ती मारणंति खेतायाम अस उलंभादो।
तो क्या सातों पुत्री के लिए मारणंति के लिए हम लोग पीडीएफ लोग से असंख्या गुना कहेंगे? सातों पुत्री में मारणांतिक की अपेक्षा तिर्यक लोक से असंख्यात गुणा कहे हैं।
पहले पृथ्वी के लिए उन्होंने लिया ये,
बाकी छह पृथ्वी के लिए कैसे लेना, क्योंकि वहाँ पे तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है।
जो सामान्य है वही उनके लिए भी घटित हुआ है।
सामान्य में तो हमने लोक का असंख्यात वाद देखा था, नहीं तिर्यक लोक से कितना लेना है?
तिर्यक लोक से असंख्यात गुणा ही किया था ना। देखो पहले मिथ्या दृष्टि का देखो ना, सामान्य रूप से मिथ्या दृष्टि की बात अलग से बताई थी। पेज नंबर 63 पर था।
अलग से कुछ बताया नहीं है, तिर्यक लोक से असर क्या होता है? ये तो पहली पृथ्वी की प्रधानता से बात की, बाकी छह पृथ्वी की प्रधानता से कुछ बात ही नहीं की।
तिर्यक लोक का असंख्यात गुणा ही हो जाएगा। ये पेज नंबर 64 पर लिखा है। वहां तो इन जनरल बात की थी ना। तीरियन गति की बात देखते हैं, पेज नंबर 66 पर। हो गया समय, हो गया, कल ही देखेंगे तीरियन की बात, हम कल देखेंगे क्योंकि नया विशेष रूप होता है ना। अभी तीरियन में 5 गुण स्थान है, उसमें मिथ्या दृष्टि का क्षेत्र यही 66। अभी जहां तक हमने पढ़ा है नारकी की बात हो गई है, अब तिरियन चौंक की बात चलेगी। अभी विषय नया है इसलिए कल से देखते हैं हम। जावानी के ज्ञान से सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो लो। मैं भाई